October 22nd, 2006, Kartik Morning Class.
नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम गौर गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय अंगश्यामलिं छटाभिरभितु मंदे कृतंतीवर जड्डं जागुडरोच संविदधतं पट्टंबरस्य श्रिया वृन्दारण्य निवासिनं हृदि लसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशित जलभुजं ध्यायेन्द्रम् आज एक विशेष तिथि आज के दिन यशोदा मैया कृष्ण के ओखल द्वारा रज्जुतना प्रेम रज्जुते वात्सल्य रसे स्नेहमयी रज्जुते ताके बंधन करे परवर्ती बसरे ते आज के दिन अन्नकूट कृष्ण मा कृष्ण बाबा निकटे बसे छिले कोले बसे बोलले बाबा आज के की उत्सव मा सकाल थी के लेखे पूरी पुआ पकवान इत्यादि सब बना छे ब्रजवासी रा सब कर छे चागत के खूब उत्कंठा किसे जन्न आयोजन कोनो रहस्य युक्त कथा हो तार संतान के तार मित्र के बंधु बांधव के बोला उचित अतः आप जी बोलूं किसे जन्म आए तखन बाबा बोलें जी हमारे परंपरा थी के एटी हमारा करे आज के इंद्रे पूजा इंद्रे यज्ञ हो गए हम ऐ सामग्री द्वारा ताके भोग लगानो তখন তিনি বললেন কৃষ্ণ বাবা আমি আপনার নিকটে একটি জিজ্ঞাসা করি এই ইন্দ্রের পূজা কিসের জন্য করা কি উদ্দেশ্যে ইন্দ্রকে এবং আমরা তার পূজা করি তার ফল কি তিনি বললেন पृथ्वी ते प्रजेते जल वर्षा हो एक जल गरुरा ब्रजवासी रा सकली पान हो ताते जीवित था एक द्वारा जल द्वारा कृषि हो कृषि ते अन्न हो अन्न ते सब लोग बेचे था अतः मेघ स्वरूप अथवा मेघर आलित इंद्र पूजा करा कर्तव्य हमारे अखन कृष्ण गंभीर है बोलें बाबा आमी तो जानी कर्म द्वारा सब किछु हो जेखाने ইন্দ্রের পূজা হয় না সেখানে বর্ষা হয় কি না সেখানকার লোক জীবিত আছে কি না সেখানকারও লোক জীবিত আছে, কর্মেই সবকিছু, কর্মের দ্বারা সবকিছু হয়, কর্মে ফল জীব ভোগ করে। আবার রজগুণের দ্বারা জগতের সৃষ্টি হয়, আবার রজগুণের দ্বারা মেঘ সঞ্চালিত হয়, তদ্বারা বৃষ্টি হয়, আর তাতে অন্ন হয়, ইন্দ্রিয়ের এর মধ্যে কোন প্রয়োজন। আমার যদি পরামর্শ শুনুন, তাহলে ইন্দ্রে পূজা বন্ধ করে গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজা কর, ইনার জন্য জল বর্ষা, ইনার কৃপাতে বৃষ্টি হলে ঘাস হয়, আমরা গোচারণ করি তাতে ঘাস খেয়ে গরুরা দুধ দেয়, সমস্ত প্রাণী বাঁচে, অতএব ইন্দ্রের পূজা কিছু করা উচিত নয়। ইন্দ্র বুঝেছিলেন, কৃষ্ণ, যে ইন্দ্রের অভিমান যে আমি সবকিছু করি, আমার উপরওয়ালা কেউ নাই। কৃষ্ণ বললেন তার ভাবনা, আমার ভক্তগণের কোন দেবতা দেবীর কোন পূজা করা উচিত নয়, একান্তিক ভাবেতে ভগবানের পূজা করবে। এরা করছে, এই দেখে পরবর্তীকালে এইরকমই হবে, এই জন্য পূজা অবশ্যই বন্ধ করা হবে। নন্দ বাবা তাহার যুক্তি ছিল না, আশ্চর্যচকিত হলে যে ছোট বাচ্চা অত জ্ঞান, তাই হোক, এই বলে যা কিছু প্রস্তুত হচ্ছিল দ্রব্য, সেই দ্রব্যগুলিকে ছাকড়াতে গরু গাড়িতে সব নিয়ে সমস্ত 82-84 ক্রোশে সে যতিপুরা আলোর গ্রাম সেইখানে উপস্থিত হলেন। আর তারা যেরকম কৃষ্ণ বলেছিলেন গো পূজা করলেন, গরুকে হলদি আর তেল মিশিয়ে লাগানো হলো ছাপ, তাদের গো পূজা করা হল, গরু পরিক্রমা করা হল, ব্রাহ্মণদেরকে পূজা করা হলো, আর পূজা করে তাহাদের পরিক্রমা করা হলো, আর ব্রাহ্মণদেরকে বলা হলো আপনারা যজ্ঞ করুন, হবন করুন, তখন তারা হোম ইত্যাদি করতে লাগলো। আর তারপরে গিরিরাজকে প্রচুর পরিমাণে যা কিছু হয়েছিল সে অন্যের কূট করা হলো, পর্বত মতো অন্যের পর্বত, মালপুয়া কচৌড়ি পুরি পকোয়ান 56 প্রকারের, আর তাকে ভোগ লাগানো হলো। ভোগ লাগানোর পরে কৃষ্ণ স্বয়ং একটি স্বরূপ ধারণ করে, আর তার উপরে দাঁড়িয়ে গেলেন বিরাট আকার। তখন কৃষ্ণ বলে দেখো ইন্দ্র কোনদিন তো প্রকট হয়নি, আজকে গিরিরাজ প্রকট হয়ে আমাদের ভোগ নিচ্ছে।
গিরিরাজ মহারাজ কি,
তারপরে নিজের প্রণাম করলেন, নিজের স্বরূপকে নিজে প্রণাম করলেন, আর ব্রজবাসীকে বললেন যে তোমরাও প্রণাম করো, দেখো তো যে কিরকম ভাবতে দু হাতে ওরা সকলকে সকলই প্রণাম করলো গিরিরাজ। তখন গিরিরাজ ওই কৃষ্ণ স্বরূপ এত যা ছিল দু হাতে সব পান করে খেয়ে দিলে, আর বড় বড় কুণ্ড তথি দুগ্ধ আর সব যা ছিল সেও খেয়ে দিলে, বলে যে আর আরো নিয়ে আসো, আরো আনো আরো আনো। এই জন্য স্থানের নাম হয়ে গেল আন্দোর গ্রাম। কৃষ্ণ হাত ধরে বললেন, প্রভু আপনার পেট আমরা ভরাইতে পারব না, আপনি তাইতেই তৃপ্ত হয়ে যান। তখন গিরিরাজ বললেন, আপনারা সকলে যা ইচ্ছা বর মানুষ। তখন ব্রজবাসীরা কি বর পায়, আমাদের লালা কৃষ্ণ সুখে থাক, ব্যাস এই বর মানু। বর দিয়ে দিলেন। তারপরে ব্রজবাসীরা খুব খেলো পেলো, যা ভগবান ভগবান প্রসাদ দেওয়া হয়েছে, আগে তো তিনি সব খেয়ে নিয়েছেন, আবার তাহার দৃষ্টি মারতে আবার সব ভর্তি হয়ে গেল। তখন ব্রজবাসীরা খেলো, গোপীরা শৃঙ্গার করল সব, আর তারপরে খেয়ে দিয়ে ছাকড়া মানে গাড়িতে বসে গোপীরা বৃদ্ধ আর বৃদ্ধ পুরুষ বাচ্চা গাড়িতে বসলো, আর ব্রজবাসী গোপরা কীর্তন করতে করতে আগে, মেয়েরাও কীর্তন করতে করতে আগে, খেতে পেতে আনন্দ করতে করে, নৃত্য করতে করতে গিরিরাজ গোবর্ধনকে পরিক্রমা করে। এইটা তো হল পরিক্রমা। তারপরে সব লোক নিজে নিজে ঘরে গেল, কিন্তু দেখলাম যে সে ও আমার পূজা বন্ধ করে আমার অনাদর করেছে, আমি ব্রজকে নষ্ট করে গোধন নষ্ট করে দিব, কোন গোপকে এই পৃথিবীতে থাকতে দিব না, পাচার পালিশ মূর্খ এই অস্তব্ধ পণ্ডিত মন্ন আমার পূজা বন্ধ করে দিয়ে ওই ওর একটা ছেলের কথাতে বন্ধ করে দিল, আমি দেখাচ্ছি। এই বলে সম্বর্ধক বেগ আদেশ দিলেন, তোমরা ব্রজকে ডুবিয়ে দাও, গরু সব মরে যাক, ব্রজবাসীরা সব মরে যাক, একটা ব্রজের নিশানা থাকবে না, আমার পূজা বন্ধ করেছে। সম্বর্ধক বেগ গুলিকে বলে দিলেন, বলে যে আমিও এরাওতে এসে আসছি, আর তোমরা বসরা মুসলাধার মুসলাধার মানে মুসল মোটা, ওই রকম হচ্ছে বৃষ্টি হতে লাগলো প্রলয় কালে, রোকে নাই, সারা ব্রজ ডুবতে লাগলো, ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো। নন্দ বাবা আর সব ব্রজবাসীরা বলেছে ওই ছেলের কথাতে ইন্দ্রের অবজ্ঞা করা হচ্ছে, এই ইন্দ্রের কাজ। তখন ত্রাহি ত্রাহি করতে লাগলো কৃষ্ণ। তখন সকলকে দেখে বললেন, চিন্তা করো না, গিরাজে পূজা করছে, গিরাজই তোমাদেরকে রক্ষা করবে। ওই জন্য ছাত্রের মতন একটা বালক যেরকম ছাত্রাচার্য কনিষ্ঠ আঙ্গুলিতে গিরাজ গোবর্ধনকে উঠিয়ে দিল, বিরাট গর্ব করল, বলেন যে সব ব্রজবাসীরা ছেলে পেলে মেয়ে যা কেলো সব লোক এই ভিতরে সে প্রবেশ আরাম করে, এখানে বিশ্রাম কর, মনে করবেন না যে এইটা পড়ে যাবে, গিরিরাজ নিজে উপরে থাকবে, কোন চিন্তা নেই, আপনার সব লোক আস বলাতে সব লোক বিরাট গর্ততে ওর মধ্যে প্রবেশ করল। আর তখন প্রথমবার ব্রজেতে গোপীরা অল্প বয়স্ক, আজকে প্রথম দিন কৃষ্ণের নিকট পড়ল, মানে কৃষ্ণ দেখাচ্ছেন যে ওদেরকে আমি কত বলবান, দেখো গিরিরাজ গোবর্ধনকে ধারণ। গোপীরা কি করছে, নিজের চক্ষুর উপরে তো গোবর্ধনকে ধার, যদি পড়ো গিরে যাও তাহলে ভস্ম করে। এই গোবর্ধন কে ধারণ করেছে, কৃষ্ণ না, কৃষ্ণ ধারণ করে, শক্তি ধারণ করেছে। তা কৃষ্ণের শক্তি কি, বাম অঙ্গেতে যে থাকে শক্তি, সেই শ্রীমতী রাধিকা করেন, এই জন্য অমর্ত্য রূপে শক্তি আছে। আই পাম কনিষ্ঠে তিনি ধারণ করেন, আইদিকে তার সখারা বলছে যে সে এইটা কি করবে, নিজের নিজের লাঠি নিয়ে ধারণ করছে। ওরা মনে করছে যে আমরাই ধারণ করছি, এরকম সাত দিন পর্যন্ত তিনি ধারণ করবেন। একটু এদিকে ওদিকে হন না, কোন পাশ পরিবর্তন করেন, দেখে সকলই আশ্চর্যচকিত হয়ে গেল। এই কিরকম ছোট ছেলে বিরাট গোবর্ধন গিরিরাজকে ধারণ করে,
today is a very special day, Titi, because on this day Krishna was bound to the grinding mortar by the rope of Madhyasoda's Vatsalya Ras, Vatsalya Prem. Also on today, this is Anukut Mahotsav, when Krishna lifted Giriraj Govardhan. Krishna sat near Nanda Baba and asked, "Oh Baba, what is the special occasion today? I have seen since morning that mother and all her friends with great enthusiasm are making thousands of preparations, and they have invited all their friends here for one big festival. What is the special day today?" Then Sri Nanda Baba answered, "Oh son, today, according to the rules of our family parampara, is the worship of Indradev." Then Krishna asked, "Oh Baba, I have a question. Why do we worship Indra? What fruit will we receive from such worship? And what is the goal of such worship?" Then Nanda Baba said, "Listen, son. We live on the earth, and the earth is maintained by rain. When the rain falls, it causes grain and grass, and we are farmers and cow grazers, therefore we depend on the rain. And Indra is the lord of all clouds, therefore we worship him." Krishna became very grave and said, "Oh Baba, what is this? Don't you know that karma is everything? Some places never worship Indra, but rain, they get the rain. Actually, the jiva only gets the result of his predestined karma. Actually, Rajaguna is performing the creation of this world. Rajaguna only creates the clouds and causes the rain to fall. Indra has nothing to do with any of this." Krishna said, "I think we should worship Giriraj. Actually, Giriraj is our maintainer here in Vrindavan. He causes the rain to fall. There is no necessity to worship Indra whatsoever." Krishna in his mind knew that Indra had some false pride, that Indra was thinking, "I am the doer, I am independent." Krishna also wanted to show that there is no need for his devotees to worship any deva, any demigod or demigoddess. Krishna wanted that everybody should be ekantik or one-pointed. Therefore, when Nanda Yasoda heard the philosophy of Krishna, they became astonished how he knows so much. Therefore, all the Brijabasis from the Pura Brajamandal were invited here for the celebration. They worshipped the cows by smearing their hands in turmeric and putting prints on them. They worshipped the cows and the Brahmanas, and the Brijabasi Brahmanas began performing havan, fire sacrifice. All the preparations that had been cooked for Indra, they made one mountain, therefore Anukut, Anu means rice, and Kut means mountain. Therefore, collecting all, more than 56 types of preparations, they made a huge offering and gave to Giriraj. Therefore, Krishna took one sarup from on top of Giriraj, in the form of Giriraj Maharaj. And in another form, he was with the Brijvasis. Then Krishna said, look, look, Giriraj Maharaj is giving us darshan. Many years we worshipped Indra, but Indra never gave us darshan. Then Krishna bowed to himself in the form of Giriraj and instructed all the Brijvasis, you should also do pranam to Govardhan. Giriraj took two hands, and with two hands he was eating all the offerings. He drank all the kuns, he took all the sweet rice, and he was calling, Anayo, Anayo, bring me more rice. Bring more. That time Krishna said, O Giriraj Maharaj, your stomach is unlimited. We cannot satisfy you. Please be satisfied by your own greatness. Then Giriraj said, whatever benediction you want, I will give you. So all the Brijvasis only prayed for one thing. May our Krishna live a long life. May our Krishna be happy. Therefore, all Giriraj had eaten all the prasad, and by his glance, all the prasad returned. Therefore, the Brijvasis began performing parikram. All the old persons and the babies sat in the bullock carts, and everyone began performing kirtan. As they were performing kirtan, they were eating the prasad and dancing. And with great ecstasy, they performed Giriraj parikram. At the end of the parikram, they returned back to their houses. Meanwhile, Indra was very angry. Hey, they stopped my worship. I will finish Vrindavan. As for that Krishna, he's nothing but a loudmouth, proud. He thinks himself very learned. He's this, he's that. Indra began giving many nice qualities of abuse. Then Indra called the Samantak clouds, which are called at the time of universal destruction. Therefore he ordered the clouds, kill all the cows, kill all the Brijvasis, and finish Vrindavan. Indra said, I will personally come on my elephant carrier, Aidavata. Therefore all the rain began coming very strong, and all the Brijvasis became afraid. Oh, we have disrespected Indra. This is our punishment. Krishna said, don't worry. We worship Giriraj, therefore Giriraj will give us protection. And with the left pinky of his left hand, he lifted Govardhan. All Brijvasis came underneath the umbrella of Giriraj. And Krishna was saying, come here. Don't think that Giriraj will fall. Therefore, that was the first time the gopis had the chance to be near to Krishna. And Krishna was little showing how powerful I am. That time the gopis were thinking to Giriraj. Giriraj, if you fall or cause disturbance to Krishna, we will finish you by our glance. Therefore, who really lifted Govardhan? Krishna has no power to lift Govardhan because he can only desire. But his Shakti fulfilled his desire. Therefore, Radharani, as the Shakti of Krishna, is always on the left side of Krishna. Therefore, Krishna showed that actually Radhika lifted Govardhan by lifting on the left hand. And for 7 days and seven nights, the Brijvasis never looked left or right. They had full darshan of Krishna there. The friends of Krishna were thinking, oh, therefore, Shakti is always there. Either she is manifest in the form of Vrishabhanu Nandini, or she is there present inside Krishna in an unmanifest form. But his Shakti is always there. The friends of Krishna, like Sridhar Subal, were thinking, what can Krishna do? He is a weakling. Therefore, with their sticks, they also propped up Govardhan.
Hare Krishna.
Erpore ki holo bolo? যতদূর বলেছি এরপরে শুনো নাই বর্ষা হতে থাকো, তারপরে কি করো? সব লোক ব্রিজবাসীরা সরল দিকে, তারপরে
কেন তুমি রাম ধস ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा निखिला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात ऋषिख्या गुरुपाद पद्मा परिप्राजिका आचार्य जत्रदंड स्वामी श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मेरा यथा योग्य प्रणाम। अभी अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे कृष्णा इंद्र पूजा को बंद करवा दिया, क्योंकि इंद्र का एक बहुत बड़ा अभिमान था कि ब्रजवासी लोग मेरे सेवा पूजा करते हैं, अगर मैं इनको ऊपर में कृपा नहीं कर तो ये लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि पानी बरसाने वाले मैं ही हूं। लेकिन उसको पहले जो था लेकिन जब भगवान स्वयं कृष्ण आते हैं बलदेव प्रभु के साथ में और उनको लादिनी शक्ति और सखा और गोपियों के साथ में, कृष्ण ने देखा इंद्र का तो बहुत बड़ा अभिमान है, कहते इंद्र कौन है, इंद्र किसको इंद्र पद प्राप्त होता है, कहते सौ अश्वमेध यज्ञ करने पर तभी किसको ये इंद्र पद की प्राप्ति होती है, लेकिन ये जो ब्रज रज है कहते एक ब्रज रज की इतनी शक्ति है, एक ब्रज रज ही ऐसे अनंत कोटि इंद्र को सृष्टि कर सकता है, करोड़ अश्वमेध यज्ञ करने पर भी एक ब्रज रज की भी प्राप्ति नहीं कर सकते। और जिस ब्रजवासी लोग कृष्ण सोच रहे हैं ये इंद्र पद किसने दिया इसको, कहते मैंने ही वामन अवतार में मैंने ही इसको दिया इंद्र पद है, लेकिन अभी इसका बड़ा अभिमान है। अरे ये ब्रजवासी लोग कौन है, ये नंद बाबा कौन है जिसका चरण की जुती को मैं स्वयं सिर पर धारण करता हूं, कहते ये सखा लोग कौन है जिनका झुटन में स्वयं खाता हूं, ब्रज गोपियां कौन है, राधा की स्वयं कृष्ण का ही लाडली शक्ति और उनको आनंद चिन्मय रस की ये ब्रज गोपियां सब प्रतिभावित मूर्ति है, इनका एक चरण की धूल भी ये इंद्र कभी ना कभी बन नहीं सकता है, जिनका दासो को मैं स्वयं करता हूँ, जिनका चरण में मैं स्वयं प्रेम की भीख मांगता हूँ, अभी इंद्र का अभिमान है, अभी मैं बन गया इनका राजा, इतना बड़ा अभिमान है इसलिए भगवान। और दूसरी बात है भगवान जगत में कृष्णा एवं काशना यह पूजा को स्थापन करना चाहते हैं, और श्री ब्रज में अगर कोई उपास्य है केवल एक ही उपास्य है गिरिराज गोवर्धन, ब्रज के कोई और दूसरे उपास्य नहीं है, क्योंकि ये सर्व अभिष्ट प्रदाता, अगर जितने सारे इच्छाएं हैं अगर कोई पूरी कर सकती है ये गिरिराज ही सारे इच्छा को पूरी कर सकती है, और क्या कहते ये ब्रज प्रेम को अगर कोई दे सकती है दे सकता है ये गिरिराज गोवर्धन ही दे सकता है, इसलिए ब्रज गोपियां राधा रानी कहती है हंताया अद्रि अबला हरिदास वर्ज, इसलिए ये हरिदास हमें ये वर्ज है ये गिरिराज गोवर्धन कोई साधारण नहीं, ये गिरिराज गोवर्धन इनका नाम ही गोवर्धन है, गो मतलब इंद्रियां, वर्धन मतलब बढ़ाना, किसको इंद्रियों को बढ़ाती है कहते कृष्ण एवं कृष्ण ये दोनों को इंद्रियों को ये सेवा करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन। इसलिए कृष्ण उन्होंने इंद्र पूजा को उन्होंने बंद करवा दिया और इंद्र पूजा को बंद बंद करवा करके उन्होंने बड़े धूमधाम से उन्होंने श्री गिरिराज पूजा की उन्होंने प्रतिष्ठित किया है और प्रतिष्ठित करके सारा दुनिया में स्थापन किया। आप लोग पूजा करना तो श्री गिरिराज गोवर्धन की ही पूजा करो। जब ब्रजवासियों ने ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा की, हर साल ब्रजवासी लोग पूजा करते थे इंद्र की, लेकिन जब पूजा का समय चला गया, इंद्र ने पूछा उनको दूतों को, कुछ भैया ये क्या बात है, ब्रजवासी तो हर साल मेरे पूजा क्या करते थे लेकिन इस बार मेरा पूजा पूजा कुछ नहीं किया, क्या हो गया? किसी दूत ने आकर के देखा, कृष्ण तो ये गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाया, सब इंद्र पूजा पूजा बंद करवा दिए। किसने जाकर के खबर दिया तो इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया और क्रोध कुमार महाराज भी बता रहे थे कैसे उन्होंने बाली से स्तब्ध अज्ञान बोल करके उन्होंने स्तुति की, लेकिन सुधा सरस्वती ने उसका सब उल्टा उल्टा उन्होंने अर्थ किए, सीधा सीधा उन्होंने पूरा स्तुति पर कृष्ण की अर्थ कर दी। अभी इंद्र को तो बड़ा क्रोध आने पर उन्होंने संवर्तक मेघ अनचास पवन को उन्होंने बुलाए, बुला करके बोले ऐसे प्रलय मचाओ ब्रज में, कोई से ब्रज नाम का जैसे कोई चीज ही नहीं रहे। तो उनका आदेश पा करके इतने जोर से बारिश और प्रलय जैसे आंधी तूफान बारिश हुई, उसी समय सारे के सारे ब्रजवासी आकर के कृष्ण के चरण में शरणापन्न हुए। बोले कृष्ण देखो तुम्हारी बात सुन करके हमने पूजा बंद करवा दिया, देखो इंद्र क्या कर रहे हैं। कहते कोई चिंता मत करो, आप लोग जिनके पूजा किए हो वो स्वयं अपना चरण में आश्रय देंगे, चलो हम सब के सब गिरिराज तलहटी में जाते हैं। और सब के सभी गिरिराज तलहटी में आए, जैसे कि हाथी जैसे कि कमल फूल को उठा ले, ऐसे ही कृष्णा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने एक हाथ में ही कनिष्ठ अंगुल पर उन्होंने पूरा पूरा गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा लिया। बल से गिरिराज महाराज की। अभी बोले सबके सब आ जाओ गिरिराज तलहटी में, सबके सब गिरिराज गोवर्धन को नीचे सहारा लिया। अभी जब सात दिन हो गया तो इंद्र ने कहा देख करके आओ तो ब्रज नाम का कोई चीज है कि नहीं, ब्रज संपूर्ण प्रलय में तसनत हो गया कि नहीं, देख करके आओ। ये गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी कहते हैं एक दूत आए, आकर के उन्होंने पूरा गिरिराज का ऊपर उन्होंने देखा, ऊपर ऊपर देखा, ऊपर ऊपर देखा तो देखा पूरा पूरा एक चिट्ठी तक भी नहीं है, सबके सब ध्वंस हो गए। तो उन्होंने आकर देखा एक चिट्ठी तक भी नहीं, जाकर बोला महाराज संपूर्ण ब्रज में तो एक चिट्ठी तक भी नहीं, सबके सब ध्वंस हो गए। तब उन्होंने और एक दूत को भेजा, तुम जाकर के देख कर क्या ब्रज क्या क्या स्थिति है। वो तो ऊपर ऊपर देख कर गया था, उन्होंने नीचे आकर के देखा, नीचे आकर के देखा वो कृष्ण कन्हैया छोटा सा था, वो छोटा सा लाला कनिष्ठ अंगुल पर एक चरण में खड़े हुए और गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखे और जितने सारे ब्रजवासी लोग बड़े आनंद पूर्वक उसको नीचे कृष्ण का मुखारविंद को दर्शन करते हुए कृष्ण की मुख कमल का आस्वादन कर रहे हैं और बड़े धूमधाम से कीर्तन कर रहे हैं और कृष्ण भक्ति की रस का आस्वादन कर रहे हैं। देखा एक चिट्ठी तक भी नहीं मरे, वहां पर धूल उड़ रहे। तब उन्होंने जाकर के बोले महाराज, तो इंद्र ने कहा ब्रज का सत्यानाश हो गया कि नहीं, कहते ब्रज का क्या सत्यानाश हो जाएगा, तेरा ही सत्यानाश हो गया। कहते क्यों, कहते ये बोल रहा था क्या कि चिट्ठी तक भी नहीं, मैंने देखा कि चिट्ठी तक भी नहीं मरा है। वो तो कृष्ण जिसको छोटा बच्चा समझते हो, वो तो इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन को एक अंगुल पर धारण करके रखे और सारे ब्रजवासी लोग कीर्तन कर रहे हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय कृष्ण कीर्तन कर रहे, आनंद पूर्वक निवास कर रहे। इंद्र तो इतने डर गया, कहते तब ये बच्चा है कौन, देखा ये बच्चा कोई साधारण नहीं, जिसने मेरे को ये इंद्रपद दिया था वामन अवतार में उनका अंशिका अंशिका आंशिक मूल कारण है वो सर्व कारण कारण है कृष्ण कन्हैया, ये कोई साधारण बच्चा नहीं। इंद्र इतना डर गया, श्री आनंद वृंदावन चंपू वर्णन करते हैं अभी इंद्र अमरावती जो अमरावती सर्व समृद्ध पूर्ण है, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण अमरावती, अभी इंद्र अभी अमरावती में जाकर के बड़ा चंचल चिंत हृदय बड़े अशांत है, दुख कर अभी क्या होगा, लगता है ये इंद्र पद ही मेरा हाथ से गया। इतने में बृहस्पति को पास में जाता है, देवगुरु बृहस्पति को पास में, बोले देवगुरु बृहस्पति अभी मेरे ऊपर बड़ी विपत्ति आ गई। बोले क्या विपत्ति है? कहते मैंने ये इंद्र पूजा बंद करवा दिया, मैं सोच रहा था मैंने इन गोकुल को मैंने ध्वंस करने के लिए प्रयास किया, मैंने सोच रहा था ये कृष्ण कन्या का छोटा बच्चा है, लेकिन अभी देखता नहीं ये छोटा नहीं, ये तो खोटा है, ये तो छोटा नहीं, तो सर्व कारण का कारण भगवान है। अभी मेरा क्या हुएगी? आप ही गुरुदेव, आप कृपा करके मुझे परामर्श दो। तो उन्होंने बोला एक काम करो, पहले चलो ब्रह्मा जी को पास में चलते हैं, ब्रह्मा जी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। तो उन्होंने बृहस्पति को लेकर के ब्रह्मा जी को पास में जाते हैं। जब ब्रह्मा जी को पास में गए, तुमने सब उन्होंने सारी कथा सुना है, ब्रह्मा जी ने कहा तुमने सर्वनाश कर दिया, कुछ दिन पहले मेरे ऊपर भी यही विपत्ति आई है। कुछ दिन पहले मैंने सोचा कृष्ण जब उन्होंने उन्होंने अघासुर को वध किया और बड़े जोर से जब जयकार लगाया कृष्ण कन्हैया लाल की जय, देवता लोगों ने जो पुष्प की बौछार किया उस समय मैंने भी देखा ये किसलिए जयकार लगा रही। आकर के मैंने देखा उसको ब्रह्मांड फटते हुए एक ज्योति कृष्ण के चरण में प्रवेश किया। और थोड़ी आगे लीला देखने के लिए देखा सखाओं को साथ में किसी झूठन खाते हुए, मेरा तो बुद्धि भ्रमित हो गया, मैं भी उनको बछड़े और सखा को मैंने चुराया। लेकिन बाद में मैं इतने विपद में फंस गया था, कृष्ण ही स्वयं इंद्र जाकर के ब्रह्मा बन गए थे, मेरा तो मेरा ही अवस्था खराब हो गया था, बड़े विपद में मैं भी पड़ गया था। कहते फिर आपने क्या किया? कहते बड़े माफी मांग करके उनको चरण में गिड़गिड़ाते हुए बड़े माफी मांग के ब्रज धूल में लोट लोट खाए। कहते ब्रह्मा जी आप ही मुझे बताइए अभी मुझे क्या करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो वो एक ग्वाला है, उनका नाम ही गोपाल है, जो गरुओं को जो पालन करते हैं, इसलिए हुए अभी महाराज बता रहे थे ना गरुओं की सेवा की बड़ी, इसलिए कृष्ण तभी संतुष्ट होते हैं अगर कोई गैया को संतुष्ट करते, गैया से बड़े गोपाल है ना, इसलिए तुम गैया को खुज लाओ और गैयों की सेवा करो, घास खिलाओ, उनका गोबर साफ करो और ये काम धेनु गैया की चरण को आश्रय ग्रहण करते हुए अगर कृष्ण को पास में जाओगे, गौवे माता है वो काम धेनु है, अगर हो सके तो कृष्ण आपको माफ कर देंगे। तो उन्होंने काम धेनु शरण में गए, हाँ उनको शरण में जाकर के उनको आगे लेते हुए आकाश से उन्होंने गंगा को मंदाकिनी को ला करके पंचामृत को ला करके अब कृष्ण मानो इंद्र को माफी करने के लिए देने के लिए कृष्ण ब्रजवासियों को थोड़ा अलग रख दिए और कृष्ण थोड़ा अलग जाकर बैठे। अरे इतने में इंद्र कृष्ण के पास में अकेला आता है ये कामधेनु को लेकर के, आकर के कृष्ण के चरण में गिरते हुए बड़े उन्होंने स्तुति करते हैं। उन्होंने 10 श्लोकों के द्वारा उन्होंने इंद्र को कृष्ण को उन्होंने स्तुति किया। जब स्तुति किया तब भगवान ने उसको सांत्वना दिए, माफ कर दिए और उन्होंने लेकिन कृष्ण संपूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं हुए। भगवान ने कहा तुम्हारा अंदर में अभिमान हो गया था, जिससे हम अनुग्रह हरि से तद धनम सने, इसलिए जिसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ ऐसे ही उसको अभिमान को दूर करते हुए उसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ। फिर उनको क्षमा प्रार्थना किए, फिर पुनः देखा हृदय से कृष्ण संतुष्ट संपूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। फिर नवद्वीप में जाकर के गद्रु में जहाँ पर हमारे परिक्रमा जाता है वहीं पर जाकर के उन्होंने भजन किया और भजन के द्वारा उन्होंने श्रीमान चैतन्य महाप्रभु गौर हरि को उन्होंने दर्शन किया और महाप्रभु लीला में आकर के माफी मांगे। इसलिए ये गिरिराज गोवर्धन ने प्रभु जो धारण किया है उसके बहुत बहुत सारी कारण है। अभी महाराज एक मुख्य प्रश्न बता रहे थे, अभी कृष्ण का जितने सारे लीला है कहते सर्व लीला मुकुंड बने लीला श्री रास लीला है। अभी भगवान को जय जय ज्वल रस सर्व रस सा, हाँ जय जय रास लीला है सर्वतम लीला। अभी प्रभु का रास लीला करनी है, लेकिन अभी रासलीला में ब्रज गोपियां तो मूल नायिका, अभी कृष्ण सोच रहे हैं अभी इनको आकर्षण कैसे करूं। तो उन्होंने मानो आकर्षण करने के लिए कहते ऐसे मुझे कुछ वीरता, कुछ पौरुषत्व, कुछ बहादुर दिखाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उन्होंने गिरिराज धारण करते हुए जैसे ऐसे उन्होंने पराक्रम दिखाया जिसको ब्रज गोपियों को मन को उन्होंने आकर्षण किया और आकर्षण करके उन्होंने अपना सर्व अभिष्ट जो लीला है, इसलिए गिरिराज ने उनको यद्यपि ऊपर दिखाई पड़ रहे हैं उन्होंने पूजा बंद कर दिया, लेकिन दूसरे तरफ उन्होंने कृष्ण की एक बहुत बड़ी सेवा की है जो कि रासलीला का जो प्लेटफॉर्म बनाया जिसको द्वारा प्रभु ने को दिव्य लीला रस का आस्वादन की
ओम ज्ञान चिमिरांगस्य ज्ञानंजन शलाकर चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गोवर्धनो जयति शैलकुलादिराजो यो गोपिका विरुदितो हरिदासवर्यो कृष्णेन शक्रमकभंग कृतार्चितो यः सत्कामस्य करपद्मतलेभ्यः भाति सताहमिवाच्युतहस्तपङ्कजे भृङ्गायमानं फलमूलकन्दलये संसेव्यमानं हरिमातृवृन्दकवे गोवर्धनाद्रिं शिरसा नमामि गोवर्धनाद्रिं शिरसा नमामि। जय श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की, जय गिरिराज धन लीला की, जय श्री कृष्ण चंद्र की, जय गौर प्रेमानंदी। सो व्हेन श्री कृष्ण लिफ्टेड गिरिराज गोवर्धन and all the Brijvasis came underneath the shelter of Giriraj Govardhan. As we heard at that time, Indradev came with his Samvartaka cloud, with all of his force and power, trying to destroy all of Braja Vrindavan. He did not want any trace of Braja to remain within this universe. He was so angry and upset. His pride had been curtailed by this tiny little cowherd boy, Krishna, who he considered to be like an ordinary human being. But this was his big mistake. Now, Sri Krishna came underneath Giriraj Govardhan with all the residents of Braja and held Giriraj Govardhan up on the little finger of his left hand. Our Guru Maharaj, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj, our Prabhupada, he has told that Krishna was giving the signal to Indra that to defeat you is simply the business of my little finger. So, in this way, Krishna exhibited his unlimited power. But how did he do this? Very, very sweetly. Just showing his little form of a cowherd boy. He did not have to exhibit some huge gigantic form to perform this activity. So he came underneath Giriraj Govardhan, and there, underneath the hill, it was not just like clumps of dirt. No, Giriraj Govardhan had supplied very beautiful sitting places for all, so much grass for all the cows, beautiful rivulets and lakes and ponds, extremely pleasing atmosphere. And all of the Brijvasis, they stayed underneath this hill in very great comfort and joy. And during this time, they began to look at Krishna's very beautiful form as he was holding the hill up and exhibiting his Shyamasundara beautiful form. They all gazed at him. and they were drinking the beauty of Krishna's form, and they were talking with one another, and constantly immersing themselves and tasting this beautiful rasa. How Krishna, look at how beautiful his hand looks. Look at the curvature of his arm. Look at how his slender waist is like this. They began to describe to each other. And Mother Yashoda was standing nearby. But Mother Yashoda was becoming worried because she thought that her little Lala was becoming weakened by performing this by exerting himself so much. And she wanted to come and feed Krishna, constantly feeding Krishna, massaging Krishna's hand. And the other cowherd boys, as Gurudev said, they were holding up their sticks to help Krishna. At one point, Mother Yashoda told Sridham, she said, Krishna now is becoming somewhat tired. I think that you should hold up the hill for a while. Give Krishna a chance to rest. So, in this way, Krishna was performing his Naravad Leela, and all the Brijvasis were immersed in this ecstasy of looking at Krishna's beauty without even blinking their eyes. And as Gurudev told, this is the first time that the gopis had the opportunity to come so close to Krishna in a public gathering. This is also one of the reasons why Krishna exhibited this Leela, to give this opportunity to the gopis to show them his prowess and attract them so that in the near future they would come and dance Ras Leela with him. So now Krishna was holding up this hill for 7 days. 7 days and seven nights non-stop. And outside, what was going on? Indra was with all of his might. He was sending thunderbolts down. He was sending torrents of rain, unlimited, the type of rain that is sent at the end of the devastation of the universe, at the end of the day of Lord Brahma. And he was pounding and pounding. But actually, we also understand that Mahadev, Lord Shiva, whose place is nearby on the bank of Manasi Ganga, he's called Chakaleshwar Mahadev. So at that time, Mahadev Shiv, he also wanted to serve Krishna. So therefore, he held up his trident above the hill. And in this way, all of the rains and everything were deflected by Lord Shiva's trident. And also it is said that he called for the Sudarshan Chakra of the Supreme Lord Vishnu to come and protect. Therefore he is called Shakaleshwar Mahadev. So underneath the hill, Mother Yashoda was telling Krishna, Krishna, you must take some rest for some time. And Krishna told Mother Yashoda, no, Maya, this hill, Govardhan himself, he is elevating himself in the air. I am not even doing anything. Simply Govardhan himself is holding himself floating in the air like this. So then, at this time, Indra began to realize that his powerful rains were having no effect whatsoever. Not even one piece of grass on Govardhan was being harmed by his rains. And then at that time, he began to realize, oh, I have come up against some greater power. What is this? I don't understand. Who is this personality? Actually, he really is the Supreme Lord. And now Indra, with embarrassment and great fear in his heart, he now subsided all the rains and all of the thunderbolts, and gradually, he went away. And now when Krishna saw that everything had stopped, then Krishna told all the Brijvasis, Nanda Maharaj, Mother Yashoda, he told them, now everything is finished. Now you may all go out from underneath this Govardhan, and you may go back to Braja. And do not fear anything. Indra will not again come. So gradually now all the Brijvasis and all the cows is described just like flowing oceans of milk, the beautiful white cows of Krishna, hundreds and thousands of them, they began to filter out from underneath Giriraj Govardhan. And now Krishna, after they were all out, now Krishna, just like a little child who is holding a mushroom, Krishna very nicely placed Giriraj Govardhan back down in its place. Jai Giriraj Govardhan Maharaj Ki Jai. So now Indradev, he was feeling very embarrassed, and he realized that he had committed a very great mistake. So he approached Lord Brahma, and he admitted to him this problem that he was having. And Lord Brahma told him, yes, I also in the past, I had some doubts. Because when I saw that Krishna had killed this huge snake, Aghasur, and I saw that the Atma of Aghasur came out and entered into the lotus feet of Krishna, I began to wonder, who is this little cowherd boy? And foolishly, I also began to test his mystic power, and I stole his calves and cowherd boys. So I made this mistake, and Krishna also proved to me that he is the supreme, unlimited Bhagavan, millions and millions of times greater than my potency. So then he advised Lord Indra that Krishna, he loves the cows very much. Constantly he's performing go puja and he's massaging the feet of the cows. So in this way, if you bring a cow with you, it will be much easier for you to approach Krishna. So in the heavenly planets, there is the Surabhi cow, who is a great devotee of Krishna. So Indra went there and requested very humbly to Surabhi that she should come and help him to apologize to Krishna. So at that time, Indradev came with Surabhi just near to where we went on Parikrama the other day, and near to the place of Govinda Kunda. And by that, in that area at that time, Krishna, after placing Govardhan, he was walking around Govardhan and he was inspecting the area. So he went off into a secluded forest area just so that Indradev could come at that time and he could come there without any embarrassment and approach Krishna. So when Krishna came to that place in the forest, Indradev came there with Surabhi, and Surabhi was in front of him. So now Surabhi approached Krishna and she began to worship Krishna, and she began to also bathe Krishna with her milk from her udders. And now Indradev began to offer very beautiful prayers to Krishna, and these prayers are recorded in Srimad Bhagavatam 10th canto. And he began to apologize to Krishna and admit to Krishna that he had become overwhelmed by false ego, thinking that he was very great and powerful, king of heavenly planets. But actually, he began to realize that the dust of Vrindavan is so superior to millions and millions of Indras, such as myself. And he fell down at the lotus feet of Krishna and begged forgiveness. And so Krishna, he forgave Indra, considering him to be his devotee, and told him that he should now return back to the heavenly planets. So in this way, Bhagavan Sri Krishna, he exhibited his unlimited potency, and he proved, and he taught lesson that no anyone that worships him, they have no need to worship any other demigods. Demigods are far, far inferior to his potency, and anyone who worships demigods is foolish. Because Krishna is the supreme personality of Godhead, the source of everything, the controller of all controllers, Ishvara Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadir Adir Govinda, Sarvakarana Karanam. So anyone that worships Krishna, they don't need to worship anyone else. So Krishna exhibited this beautiful pastime to show this, and to at the same time show the sweetness of his Braja Leelas, how in every single way Krishna is attracting the hearts and souls of the Brijvasis. So anyone that hears this pastime, anyone that narrates this pastime, anyone that takes part in this Annakut ceremony, Srimad Bhagavatam is giving so many benedictions, they will never have to beg anywhere. They will never be in want. They will never have to fear anything. So in this way, Krishna, the supreme Lord of Braja, the supreme attractor of the hearts of all the Brijvasis, showed this Vrindavan Leela, and today, under the guidance of our Gurudev, we have the opportunity to also go to Giriraj and to perform the same Anakut festival that was performed 500 years ago by Sri Madhavendra Puripad, and to pray at the lotus feet of Giriraj Govardhan, Nija Nikati Nivasam Dehi Govardhanatvam, that please Giriraj Govardhan, give me a residence eternally at your side so that I may see the beautiful pastimes of Krishna with all of his associates. Vanchakavadurubhashtyat Vibhavasam 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 Vibhavas
इस प्रकार से इंद्र का मान मर्दन किया और सुरभि गैया को लेकर उन्होंने अपना अपराध क्षमा कराया और ऐरावत के जल से अभिषेक कराया और उनका अभिषेक करके नाम रखा गोविंद। गोविंदति इति गोविंद, जो गो गो गोपी गोवत्स सबका ही आनंद वर्धन करते हैं। बिंदती कृष्ण लीला के अंतर ध्यान होने के बाद में 200 वर्ष बाद करीब बज्रनाद कृष्ण के प्रपौत्र ब्रज में आए। महाराज परीक्षित शांडिल्य मुनि और भागुरी मुनि इत्यादि सब लोगों को लेकर के कृष्ण के लुप्त चिन्हों का उद्धार किया, कुंडों का निर्माण किया और यहां पर गोवर्धन में कृष्ण लीला जो हुई थी उसी के रूप में श्रीनाथ जी की प्रतिष्ठा की और वो भी कालांतर रूप में पीछे से मुसलमानों के आक्रमण पर श्रीनाथ जी को पुजारियों ने मट्टी के अंदर में काट दिया और भाग गए। बहुत वर्ष हो गए उसके ऊपर में बांस के बगीचे पेड़ पौधे सब उग गए। अभी करीब करीब 550 वर्ष पहले माधवेंद्र पुरीपाल जी ब्रिज में आए जति वहां आंदोलन ग्राम के करीब में भजन कर रहे थे। उनको आदेश हुआ, मैं बहुत दिनों से मिट्टी के अंदर में गड़ा हुआ, हमारा उद्धार करके हमारी पूजा करो, हमारे अंग गर्म हो गए हैं, उसको सुशीतल करो अभिषेक इत्यादि के द्वारा। ध्यान छूटने के बाद में माधवेंद्रपुरी जी ने गांव के लोगों को सहायता लेकर और गए और जहां गोपाल जी थे उसका चिन्ह देख करके और वहीं जगह खुदवाया बड़ी सावधानी से, उसमें श्रीनाथ जी का सिद्धि रहा है। उसको पहाड़ के ऊपर में पत्थरों का घेरा बनाकर उनको रखा और उनका अभिषेक किया। मथुरा के थड़ी मानी लोग सब लोग इसमें सुन करके ये गोपाल जी प्रकटित हुए हैं श्रीनाथ जी, सब लोग आए दूध दही मधु इत्यादि के साथ में उनका अभिषेक किया। कितने दिनों तक तो अभिषेक किया और इसके बाद में बड़ी भूख लगी है। एक महीने तक विराट अन्नकूट किया गया।
अन्नकूट महाराज साहब की जय, विराट महाराज की जय।
मथुरा के सेठ लोग एक एक दिन उत्सव करने लगे। इस प्रकार से महीनों चला। गिरिराज जी ने कहा जो सब तो ठीक हुआ, श्रीनाथ जी ने हमारा अंग भी सुशीतल नहीं हुआ, पूरी से ओ चंदन ले आओ, मलय चंदन और उसे घिस करके हमारे अंगों पर लगाओ, तब पूजा का भाग किसी के ऊपर में दे करके गए। इसका इतिहास हम लोग शाम को विशेष रूप में वर्णन करेंगे। अभी हम लोग गो पूजा करेंगे। मंदिर से पुजारी एक आदमी चला जाना वन महाराज, पूजा का सामान आरती का सामान और पंचपात्र इत्यादि चमर तमर पंखा सब ले आना, उनकी परिक्रमा करके पूजा करके और ब्रजवासी ब्राह्मण का पूजा करेंगे और फिर इसके बाद में 10 बजे के करीब में 11 बजे हम लोग यहाँ से अन्नकूट का सारा सामान लेकर गिरिराज जी के मंदिर में जाएंगे, खास गिरिराज जी की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, उनका भोग निवेदन करेंगे और फिर 12 बजे 1 बजे तक लौट करके सभी को महाप्रभु उनका गिरिराज जी का प्रसाद वितरण। आज यहीं तक हम लोगों का समाप्त। हरे कृष्ण।
हम लोग जब गिरिराज जी गुरु जी के साथ
बैठो,
हम लोग गुरु जी के साथ जाते हैं गिरिराज जी को निवेदन करने के लिए। लौटते समय बहुत से लोग कोई डर ना करके गुरु जी के पास प्रसाद जाइए सोच न सोच करके अच्छे अच्छे चीज अपने बैग में जेब में भर लेते हैं, ऐसा ना करें और खाली डालिया ले आते हैं। वी हैव नोटिस लास्ट ईयर बिफोर लास्ट ईयर सो मेनी डिवोटीज आफ्टर ऑफरिंग ऑन द वे बैक दे हैव नो फियर दैट प्रसाद विल गो टू गुरुदेव एंड वैष्णवस द डिलीशियस थिंग दे पुट इन देयर बैग एंड पॉकेट एंड ऑलमोस्ट एम्प्टी बास्केट दे ब्रिंग बैक टू प्रेमानंद प्रभु। So Prabhupada requesting to announce this, no one should steal anything and should not allowed also. No one should steal anything after prasad. All prasad will come to here and Premandu and other will distribute among us. Premandu bollen je proti bochhor ekon korche bhaktara ki koren prasad phirar samoy bhalo bhalo jinish dile bag e ebong pocket e bhore nen, erokom jeno keu na koren. Hare Krishna.
So in this pastime, Indra's pride was crushed. Then when he took shelter of Surabhi and came here and offered worship to Krishna, therefore Krishna received the new name Govinda, who always increases the happiness of the cows, of the gopis, of the gopas. His name is Govinda. Ayurveda, the elephant caddy of Indra, personally performed the Abhishek of Krishna. Then 200 years after the disappearance of Krishna's pastimes, the great grandson of Krishna, Bhajanam, came here and re-established all the lost places of Krishna's pastimes. At that time he established the Murti of Srinathji. Then some thousands of years after, due to fear of the Muslim invaders, the Pujaris hid Srinathji in the ground, just near his Sankarshan Kund. Then Sri Madhavendra Puri, he came to this place. At night time he received the order from Srinathji. Oh, I have been hidden under the ground and my body is burning. Please re-establish my seva. Therefore Sri Madhavendra Puri, taking the local villages. Srinathji had been covered by trees and creepers so long he was under the ground. Very carefully they extracted the earth and they discovered Srinathji there, or Gopalji. They established Gopalji on a rock and again they performed his Seva Puja. All the rich, wealthy persons from Mathura came and contributed. Therefore for 1 month they performed Abhishek and Anukut of Krishna. Every day they offered thousands and thousands of preparations. But still after 1 month, Gopal said to Madhavendra Puri in the dream, my body is still burning. Please bring me some Malaya Chandan, some sandalwood. By grinding that and placing it on my body, I may feel some relief. Therefore today we remember all these things. So now we will perform some Gopuja, some worship of the cow, worship of the Vrijvasi Brahmanas, and exactly at 10 o'clock, more or less, from here, we'll take all the ingredients and go and offer directly to Giridharas.